ఆదిగురు శంకరాచార్య విరచిత్ వేదాంత డిండిమ కే ఆధార్ పర్ ప్రాతకాలీన ప్రవచన్ కే అంతర్గత వేదాంత విచార్ చల్ రహా హై. అభ్యాస్ కే లియే కిత్నా హై శ్లోక్? 48. అహం సాక్షీతి యో విద్యాత్ వివిచ్యైవం పునః పునః సయేవ ముక్తోసౌ విద్వాన్ ఇతి వేదాంత డిండిమః. నాహం మాయా న తత్కార్యం న సాక్షీ పరమోస్మ్యహం్ ఇతి నిస్సంశయ జ్ఞానాత్. ముక్తిర్వేదాంత డిండిమః్ నాహం సర్వం అహం సర్వం మమ సర్వం ఇతి స్ఫుటం జ్ఞాతే తత్వే కుతో దుఃఖం ఇతి వేదాంత డిండిమః్. దేహాది పంచకోశస్థా సత్తా యా సత్తా ప్రతిభాసతే సా సత్తాత్మా న సందేహ ఇతి వేదాంత డిండిమా. దేహాది పంచకోశస్థా యా ఫూర్తిరనుభూయతే సా స్ఫూర్తిరాత్మా నైవాన్యత్ ఇతి వేదాంత డిండిమః్. దేహాది పంచకోశస్థా యా ప్రీతిరనుభూయతే సా ప్రీతిరాత్మా కూటస్థ ఇతి వేదాంత డిండిమః్. तो विचार चल रहा है अपने बारे में मुमुक्षु को कैसे विचार करना चाहिए. नाहम ना ज्ञानम श्याम अहम् अज्ञान का मेरे साथ कोई संबंध नहीं है. मैं तो अज्ञान का भी प्रकाशक साक्षी हूं. ना ज्ञानम श्याम अहम देवो अज्ञान साक्षी इति निश्चया. तुम जब अज्ञान का भी साक्षी होते हो तब अज्ञान का कार्य के द्वारा होने वाला संसार अज्ञान के कार्य के रूप में परिणत ये जगत तुम्हें विक्षेप कैसे कर सकता है. तब ये निश्चय होने पर फल क्या है? सर्वानर्थ निवृत्ति स्यात्। फिर संसार में तुम्हारे अनिष्ट के लिए, तुम्हारा अनर्थ करने के लिए कोई भी बचता नहीं। इसी बात को और विचार करने के क्रम में दूसरे श्लोक से कह रहे हैं, अहम् साक्षीति यो विद्यात् विविच्चैवं पुनः पुनः स एव मुक्तो असौ विद्वान् इति वेदांत दिन्दिमः। शास्त्र पढ़ के बहुत से जगत के पदार्थों का जानकारी रखना ये कोई विद्वान का लक्षण नहीं है। ज्योतिष कहा जाता है, महात्मा लोग एक दृष्टांत देते हैं, ऐसे ही तीन आदमी थे, वो उच्च शिक्षा पढ़कर घर लौट रहे थे। एक ज्योतिष शास्त्र का पारंगत था, स्पेशलिस्ट हो गया था, है ना? ज्योतिष को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? एस्ट्रोलॉजिस्ट। ऐसा एस्ट्रोलॉजिस्ट हो गया कि उसके बराबर दुनिया में कोई नहीं है। भूत भविष्य वर्तमान वो तो सब कुछ बैठे बैठे जानने वाला हो गया। कहते हैं दूसरा वह डॉक्टर निकला, वह मरते मरते को भी बचा सकता है। कितनों का जीवन उसने बचाया अपने प्रैक्टिस के द्वारा, अपने अनुभव को प्रयोग करके। बड़ा उच्च कोटि का डॉक्टर था वो। आप लोगों ने कई बार सुना दृष्टांत है, ये सुना हुआ है। तीसरा इंजीनियर था, कहते हैं वह बैठे बैठे सब हिसाब किताब, कितनी गहराई, कितनी ऊंचाई, कितनी दूरी, कितनी नजदीक, सबको जान सकता था वो। तीनों मिलकर कहीं जा रहे थे तो एक बड़ा भारी नदी, दरिया, उसको पार करना था। तो एक नाविक को बुला लिया, कहा कि हमको उस पार जाना है, ले चलो। तो बोले कोई नहीं, हम इसी के लिए बैठे हैं, बैठ जाओ नाव में, बोट में बैठ जाओ। तीनों बैठ गए और वो नाविक जो था केवट, वो चप्पू हिलाने लगा और नदी में लेकर जाने लगा। दरिया खूब बड़ा, उसका पार्ट बहुत लंबा चौड़ा था, तो घंटों बोट में चलाता रहा वो। संयोग से अचानक बड़ा भारी तूफान आ गया और नाव बोट नदी में डगमगाने लगा। तो सब लोग घबराने लगे, ये क्या कर रहा है? बोले हम कुछ नहीं कर रहे महाराज, ये तो तूफान आ गया है, हम बचाने की भरसक कोशिश करेंगे। कहते हैं कि उस नाव में चढ़ के जाते जाते एक आपस में वो लोग बात कर रहे हैं, संवाद कर रहे हैं, आप कहां से आए? बोले हम तो अमेरिका से आए, अमेरिका से आए क्या कर रहे हैं? अरे हम बहुत बड़े डॉक्टर हैं, हमने कितनों को मरते मरते बचाया है, हमारी स्पेशलिस्ट हमारी विशेषता है, बड़े अच्छा, हम बहुत बड़े आदमी हैं। आप कहां से आए? हम काशी से आए। क्या करके आए? बड़े भारी ज्योतिष, हम भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ जानते हैं, कितनों का भविष्य बताया। तो आप कहां से आए? हम बंबई से आए। इंजीनियर तो बंबई से जाएगा ना। तो क्या करते हैं? हम इंजीनियर हैं, हमारे डिजाइन से, हमारे एस्टीमेट से कितने बड़े बड़े प्रोजेक्ट बने हैं। है, समुद्र में पुल बन गया इतना लंबा, है बन गया ना, कहां बरली बांद्रा सीलिंग, ये हमारी ड्राइंग है, हमारे डिजाइन है, हमारे दिमाग का उपज है वो। वाह, एक दूसरे की प्रशंसा, आगे बढ़ रहे थे। तो तीनों ने उस केवट को पूछा, भाई तेरी क्या विशेषता है बेटा, तूने क्या पढ़ रखी है, तू कहां से आया? कहां से आना महाराज, हम तो यही नदी के किनारे पैदा हुए हैं, हमारा बाप यही बोट चलाता रहा, हमारे दादा यही चलाते रहे, यही पैदा हुए, अब हम भी यही कर रहे हैं, हमारे बच्चे भी यही करेंगे, क्या पढ़ना लिखना है महाराज? 2 जून की रोटी मिल जाए बस हो गया, है तेरा तो जिंदगी बर्बाद है, मनुष्य होकर कुछ किया नहीं तो जिंदगी बेकार है, पढ़ा नहीं लिखा नहीं। बेचारा वो नाभिक, अच्छा भाई हमारा जिंदगी बर्बाद है भाई, तुम लोगों का जिंदगी सार्थक हो गया है, तुम बड़े विद्वान हो, हम मूर्ख के मूर्ख रह गए। जब तूफान बहुत तेज हो गया, डगमगाने लगा, तो उसने कहा, कहते हैं अरे भाई तुम तीनों को तैरना आता है कि नहीं, पूछ लिया उसने, भाई तुम तीनों को तैरना आता है कि नहीं? बोले तैरना तो नहीं आता है, डॉक्टर को भी तैरना नहीं आता, ज्योतिष को भी तैरना नहीं आता, इंजीनियर को भी तैरना नहीं आता है। ठीक है भाई, ये तो अब ये नाव ये पलट ही जाएगा, इतना तेज तूफान है, तो हमारा तो जिंदगी बेकार है। तुमने कहा भाई इतना है कि हम तैरना जानते हैं, अब ये नाव तो डूब गई है, डूबी रही है, जीवन बचाने वाले डॉक्टर है ही हो, बचा लो, अब तुमको क्या चिंता है, हम तो चले भाई। नाव पलट गई, तब तक तो तीनों डूब गए, वो निकल गया तैर कर। इस विद्वान को, इस प्रकार की विद्या को कोई विद्या ही नहीं कहा जाएगा, ये तो अपूर्ण विद्या है, ये सर्व नहीं है, ये विद्या पूर्ण नहीं है। विद्वान तो मान लो उस समय तो वही विद्वान है, वही केवट ही विद्वान है, कम से कम तैरना तो जान रहा है। ये बात शंकराचार्य जी श्लोक के द्वारा कहते हैं, उसी को विद्वान कहा जा सकता है जो ये निश्चय में पहुंच गया है, दृढ़ निश्चय में पहुंच गया, अहम साक्षीति यो विद्यात विविच्यैवं पुनः पुनः, बार बार विविच्य विवेक करके विचार करके, कोई एक बार दो बार विचार करके यह अध्याय छूटने वाला नहीं है। अनादिकालिक जो अध्यास इतना दृढ़ हो चुका है कि वह एक दो बार विचार करने मात्र से छूटने वाला नहीं है। पुनः पुनः सैव मुक्तो, वास्तव में इस संसार में वही व्यक्ति मुक्त हो सकता है और वही विद्वान है और वही मुक्त हो सकता है। ये वेदांत का डिंडिम घोष है। ये पुनः पुनः विचार करने की बात शंकराचार्य ने कही है, इसलिए उसी विचार का निरंतरता यहां दे रहे हैं। आगे कैसे विचार करना है? नाहं माया न तत्कार्यं न साक्षी परमोऽस्म्यहम्। अहम माया न, मैं माया भी नहीं, माया जन्य कोई पदार्थ मैं नहीं। सामान्य वेदांत की प्रक्रिया में ईश्वर को माया जन्य माना जाता है और पंचदशिकार विद्यारण्य मुनि जी ने जीव को भी माया जन्य ही कहा है। माया रूपी कामधेनु से ईश्वर और जीव रूपी दो बच्चड़े पैदा हुए। विद्यारण्य मुनि जी पंचदशी में ये शब्द प्रयोग करते हैं, माया रूपी कामधेनु गाय से, वो गाय का उपमा दिया माया को। वत्सौ जीव ईश्वरौ, जीव और ईश्वर नामक ये दो बछड़े माया रूपी गाय से पैदा हुए हैं। ये क्रमशः दो बछड़े माया जन्य उसके दूध को खूब पीवे, जितना पीना हो पीवे भाई। माया जन्य माने गाय से स्तन से निकला हुआ दूध खूब पीवे, यानी ये जगत का सारा पदार्थ गाय का दूध ही तो है। माया गाय है तो उसी के द्वारा पैदा हुए है ये। तो संसारी अज्ञानी सब इन्हीं विषयों को सेवन करके अपने को कृतार्थ मानते हैं, तो वो पीते हो तो पीवे भाई। लेकिन हमको तो न माया ने पैदा किया है, हमको माया ने पैदा नहीं किया है। क्यों महाराज, तुमको किसने पैदा किया है? अरे भाई, माया नहीं थी तो भी हम थे। जिस समय माया नहीं थी तो भी हम थे। हम तो माया के साक्षी हैं और माया के अधिष्ठान हैं, माया का भी आधार हैं। माया ने हमको ही आधार बनाकर, हमारे अधिष्ठान में ही अपने खुद रहकर सारी जगत प्रपंच की रचना की है, उसका साक्षी हम हैं। ना हम माया न तत् साक्षी न तत् कार्यम, मैं माया भी नहीं हूं, माया का कार्य भी नहीं हूं। बोले वेदांत में तो ये बताया गया है ना कि तुम अविद्या से जीव बना हुआ है। अरे ठीक है, जीव बना है वो ठीक है, तो हम जीव होते तब ना माया से बने हैं। हम तो जीव नहीं है भाई, किसने कह दिया हम जीव हैं? है? हम जीव हैं ये किसने कह दिया? तुम क्या हो फिर? हम तो तत्साक्षी, ये श्लोक में तो यहां तक कह दिया कि न तत् साक्षी, क्योंकि जब हम थे तब वह नहीं थी तो हम साक्षी कैसे हो गए उसके? उसका अस्तित्व ही नहीं है तो साक्षी कहां से होंगे हम? साक्षी के लिए तो साक्ष्य होना चाहिए ना, साक्ष्य साक्ष्य माया, माया ही नहीं है हमारे स्वरूप में। तो अभी तक तो साक्षी साक्षी कहते हुए आए हैं, मैं देह नहीं हूं देह का साक्षी हूं, मैं प्राण नहीं हूं प्राण का साक्षी हूं, मैं इंद्रिया नहीं हूं इंद्रियों का साक्षी हूं, मैं मन नहीं हूं मन का साक्षी हूं, मैं बुद्धि नहीं बुद्धि का साक्षी हूं। फिर अब अचानक आप मैं साक्षी भी नहीं कह रहे हो, ये क्या बात है? बोले पहले अभ्यास में यही कहना पड़ेगा। अब ये निश्चय हुआ कि माया ही मेरे स्वरूप में सिद्ध नहीं हुआ तो माया का साक्षी मैं कैसे होगा? ना हम माया न तत्कार्यम न साक्षी परमोऽस्मि हम इति निसंशय ज्ञानात्। ऐसा जो निश्चय है, इतना दृढ़ निश्चय है कि हूं कि नहीं ये शंका बिल्कुल ही नहीं है, करामलकवत स्पष्ट है कि नहीं ये संशय नहीं है। जैसे आप लोगों को मैं पुरुष हूं मैं स्त्री हूं संशय है, स्त्रियों को आप लोग महिला हो स्त्री हो आपको कभी डाउट हुआ है कि मैं हूं कि नहीं महिला? जब से होश संभाली है आज तक भी मैं हूं कि नहीं कभी डाउट हुआ है? आप लोगों को मैं पुरुष हूं ये कभी डाउट हुआ संशय हुआ है? कोई फॉर्म भरनी होती है सरकारी तो वहां लिंग का कॉलम आता है, लिखना पड़ता है कि नहीं बोलो? मेल फीमेल तो कुछ वहां भरने के जो कुछ है कॉलम, उसमें कहीं शंका संशय हो तो पूछ लो, है ना? पूछना पड़ता है ना, इसकी जगह क्या लिखें? और तो बात छोड़ दो, आपकी रेगुलर इनकम कितनी है वो भी लिखिए, ये कॉलम आएगा। आप अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट से न पूछे बिना नहीं लिख पाओगे। कितना लिखूं? कम लिखकर गड़बड़ होने हो जाएगा कि ज्यादा लिखकर गड़बड़ होगा कि है? तत्संबंधी जो जानकार है उससे पूछकर लिखना पड़ेगा ना कि कितना लिखूं, मेरी प्रॉपर्टी रेगुलर इनकम कितना है? तो वो कहेगा कि हाँ इतना लिखिए। तो आप लिखोगे कि मेरा आर्थिक सलाहकार है, सलाहकार ने ये सलाह दी है, इसलिए आप वही लिखोगे जो सलाह देगा। किसी किसी को तो अभी तक अपना गोत्र पता नहीं होता है, बहुत लोगों को गोत्र क्या है पता ही नहीं चलता है। मान लो उस फॉर्म में गोत्र लिखिए अपना, तो बहुत लोगों को समस्या हो जाएगी। अब लोगों तो संकल्प आदि करते रहते होंगे कराते रहते होंगे, पंडित पूछता है गोत्र उच्चारण करिए, अब अपना गोत्र लिख लोगे? बहुत से लोग जो ये कर्म ही नहीं कराते हैं उनको गोत्र क्या है पता ही नहीं चलता है। तो फिर पूछना पड़ता है जानकार से, भाई हमारा गोत्र क्या है, यहां गोत्र लिखने के लिए कहा है। दो चार आदमियों से अपने बुजुर्गों से अपने वड़िलों से पूछ पाछ के फिर वो लोग कहेंगे कि हाँ तेरा ये गोत्र है तो ये गोत्र लिख दे। तब लिख दोगे पूछ पाछ कर, वहां शंका होगी ना कि मैं कौन सा गोत्र लिखूं। लेकिन जहां लिंग की बात आएगी मेल या फीमेल लिखिए, तो किसी से पूछने जाओगे तुम? है कितना पक्का है? मैं मेल हूं, मैं फीमेल हूं, मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, फट से लिख दोगे, किसी से पूछे भी नहीं। पूछे बिना कैसे लगा? बोले हमको संशय ही नहीं है तो क्यों पूछे, पक्का है। उसी बात को यहां कह रहे हैं निसंशय। यह अभ्यास इतना दृढ़ हो जाए कि आपको इसी तरह का संदेह संशय रहित हो जाए कि न हम माया न तत्कार्यम न साक्षी, फिर तुम क्या हो? इन सब से परे हूं मैं, परोस्मि अहम् इति निसंशय ज्ञानात्। इसी ज्ञान से ही जीव मुक्त हो सकता है भव बंधन से, संसार बंधन से, जन्म मृत्यु से, जरा व्याधियों से, कर्म बंधनों से मुक्त हो सकता है, अन्यथा और कोई उपाय नहीं। इति वेदांत डिंडिम। और आगे विचार कर रहे हैं क्योंकि पुनः पुनः की बात कर रहे हो। नाहम सर्वम अहम सर्वम मम सर्वम इति स्फुटम ज्ञाते तत्ते कुतो दुखम इति वेदांत डिंडिमा। अहम न सर्वम, मैं तो अकेला हूं, है? मेरे साथ और किसी का कोई संबंध ही नहीं है। पंचदशी के द्वितीय प्रकरण आरंभ हो रहा है स्वाध्याय में। द्वितीय प्रकरण का विचार का आधार बनाया छांदोग्य उपनिषद की श्रुति, सदैव सौमिदमग्रहस्य एकमेव अद्वितीयम्। एकम एव अद्वितीय, तो एकम कह दिया तो खत्म हो गई बात। एव एक ही, और एक ही कह दिया तो बात खत्म हो गई। अद्वितीय पुनरुक्ति हो गया कि नहीं? दूसरा नहीं था, एक था, दोनों बातें एक ही तो है। दूसरा नहीं था, एक था, एक था, दूसरा नहीं था, बात खत्म हो गई। तो एक ही था, ये क्यों ही क्यों कर रहे हो? विचार चलेगा ये पंचदशी के, अब यही विचार चल रहा है। तो कई बार एक में भी भेद रहता है, उसको कहते हैं सुगत भेद। एक में भी क्या रहता है? भेद रहता है। कोई कहता है ना कि घर में सब चले गए घूमने के लिए, बच्चे भी बहू भी सब चले गए, आजकल तो हम अकेले हैं। अरे भाई तुम अकेले कहां हो? तुम्हारा सिर है, तुम्हारा हाथ है, तुम्हारा पांव है, तुम्हारे दस दस इंद्रियां हैं, तुम चार चार अंतकरण हैं, तुम अकेले कहां हो? पूरे फौज के साथ बैठे हो। अकेले कहां हो बोलो? दस इंद्रियां नहीं है तुम्हारे साथ, तुम अकेले हो। देख लो, फिर कहते हैं अकेले हैं। पांच प्राण नहीं है तुम्हारे साथ, अकेले हो तुम। पूरा 19 का फौज लेकर बैठे हो, कहते फिर अकेले हो। इतना बड़ा 19 व्यक्तियों का फौज लेकर बैठने वाला ये कहे अकेले हो, कैसे समझे हम? तो इसको क्या कहते हैं? अकेले में भी ये फौज खड़े हो गया, इसको स्वगत भेद कहते हैं। स्व अपने में ही परस्पर भिन्नता, स्वगत भेद। दूसरा सजातीय भेद, एक ही जाति का दूसरा। अरे तुम हो, तुम्हारे कुटुंब तो कोई नहीं होंगे, लेकिन तुम्हारा ड्राइवर है कि नहीं? घर है तुम्हारे घर तुम्हारा ड्राइवर है, तुम्हारे घर तुम्हारा रसोईया है, तुम्हारे घर तुम्हारे झाड़ू लगाने वाली है, पोछा लगाने वाली है, काम करने वाले हैं, और तुम कहते हो कि मैं अकेला हूं। क्या मतलब है इसका? सजातीय भेद। और तुम कहते हो अकेला हूं घर में, क्या कुछ बात समझ में तो हमको तो नहीं आती है भाई। सोफा नहीं है तुम्हारे घर है? नहीं है सोफा? फ्रिज नहीं है? है? रेफ्रिजरेटर नहीं है क्या? सोफा नहीं है क्या? पंखा नहीं है क्या छत में लटकी हुई? तुम्हारा पलंग नहीं है क्या? तुम अकेले हो? ये क्या है? विजातीय है। अपने में ही इतना बड़ा फौज है, दूसरी बार अपनी जाति के मनुष्य जाति के ही कर्मचारी का स्टाफ है, तीसरी बात है तुमसे विपरीत भिन्न जाति के है? खाट है, पलंग है, कुर्सी है, टेबल है, कितना बड़ा फौज है गिल्लो। तो तुम अकेले कहां हो बोलो? ये तीनों प्रकार का जो भेद है उसका निषेध करने के लिए इस वाक्य में ये तीन पद का प्रयोग किया। स्वाध्याय का प्रसंग मैंने अभी बोल दिया, वही बात यहां शंकराचार्य कहते तुम्हें विचार इसी तरह करना पड़ेगा। नाहम सर्वम अहम सर्वम मम सर्वम इति स्फुटम। मैं सब नहीं हूं और जो सब है वही मैं ही हूं। जो सब हैं वो क्या है? मैं ही हूं, अहम सर्वम। और सर्वों की सिद्धि मेरे से सिद्ध हुआ हुआ है, इसलिए मैं सबके चलते सिद्ध नहीं हूं, मेरे चलते सब सिद्ध है। शंकराचार्य जी बोलते हैं ना, तवा अहम न माम की नस्तुम। मैं तुम्हारा हूं, तुम मेरे नहीं हो। ये देखो इसका मतलब क्या हुआ? मैं अकेला हूं और जो भेद है वो मेरे से कल्पित है, और ये सर्व से मैं सिद्ध नहीं हूं, जबकि मेरे से सर्व सिद्ध है। सभी मिलकर मैं बना हूं ऐसा नहीं है। पहले मैं हूं और उसके बाद ये सब है। सम्मीलने नये नये और नई किंचित अस्ति। तुम जगत में अनेक को देखते हो और ये सिद्ध करते हो कि ये फूल है, ये किताब है, ये कुर्सी है, टेबल है, पंखा है, अलग अलग सभी चीज का अस्तित्व तुम जानते हो। कब तक जानोगे? आंख खुली है तब अलग अलग जानोगे, आंख बंद हो गया तो सब गायब। सम्मीलने नये नये और नई किंचित अस्ति। तो इसका मतलब ये सर्वों की सिद्धि तुम्हारे द्वारा सिद्ध है। तुम्हारे आंख खुली तो सब ठीक है, तुम्हारे आंख बंद हो गया तो कुछ भी नहीं है। क्या दिख रहा है? काला। कुर्सी क्या दिख रही है? काला है? कुर्सी दिख रही है? नहीं, आंख बंद होते ही कुर्सी दिख रही है? नहीं, एक काला धब्बा है। सब गायब हो गए कहां? उस काले में। हाँ, सब गायब हो गए। हाँ, ज्ञाते तत्ते कुतो दुखम। जब ये बात निश्चय कर लेते हो फिर तुम्हें किससे दुख होगा? अभी तुम जिससे दुखी हुए हो वह तो अपने से भिन्नम निश्चय करते हो, तब कहते हो कि उससे मैं दुखी हूं। जब यह निश्चय हो गया कि वह तो मैं ही हूं, तो फिर दुख होगा ही नहीं। ब्रह्मलीन स्वामी अखंडानंद जी महाराज जी ने एक दृष्टांत दिया है, कितना फर्क पड़ता है। कहते एक गांव में कोई वैश्य रहता था, उसने शादी कर ली एक बेटा भी पैदा हुआ। पत्नी ने कहा कि अब ये कुटुंब बढ़ रहा है, तुम पहले अकेले थे, मैं पहले अकेली थी, अब दोनों शादी हो गया, फिर बच्चा हो गया, ये घर खर्च तो इससे पूरा होने वाला नहीं है, कुछ करना पड़ेगा। उसने कहा कि ठीक है, अब क्या करें, तो कुछ धंधा पानी काम धाम करो। बोले ठीक है, अब मैं काम में चला जाता हूं, काम की खोजी में जाता हूं। कहां? अब कहीं जहां शहर है, जहां काम मिले वहां चला जाता हूं, तुम अपने बच्चों को संभाल लेना। तो ठीक है, पत्नी की अनुमति से गया वो बड़े शहरों में, बंबई आ गया होगा आप लोगों की तरह, कलकत्ता गया होगा, दिल्ली गया होगा, कहीं गया वो, और वहां जाकर काम खोजने लगा। खोजते खोजते भगवान की कृपा हुई कि अच्छी नौकरी मिल गई उसको, काम धंधा मिल गया। तो उसने पैसा भेजता रहा, बीच बीच में कमाई करते गया, घर में पैसा भेजता गया, तो उधर घर का भी खर्च चल पड़ा, बच्चे की पढ़ाई ठीक है। अब काम अच्छी थी, छोड़ भी नहीं सकता था, करता गया। कहते हैं कि लगभग 15-16 वर्ष हो गया वो वहीं बैठकर काम कर रहा है, तो पत्नी भी ये समझती है कि चलो पैसा भेज रहा है तो रेगुलर भेज रहा है, खर्चा चल रहा है। कहते बाद में उसकी पत्नी बीमार हो गई, तो इलाज पानी किया तो कुछ नहीं, ठीक नहीं हो रहा है। डॉक्टर ने कहा ये तो असंभव है, असाध्य रोग है। तो उसने पति को चिट्ठी लिख दी, भाई ऐसा रोग लग गया है, डॉक्टर ये कह रहे हैं ये असाध्य रोग है, ये संभव नहीं इसका इलाज, तो अब छोड़ो नौकरी नाकरी छोड़ो, तुम आओ कम से कम मरने से पहले पहले मिल तो ले। फिर भी नहीं आ रहा है, वो कहता है कि क्या करूं भाई, आऊं कि ना आऊं, ये काम बड़ी मुश्किल से, बहुत अच्छा काम है, एक बार छोड़ देता हूं तो फिर दोबारा ये काम मिले ना मिले। आज अमेरिका में यही समस्या है, यहां वो समस्या नहीं है, हम तो अमेरिका घूमते रहते हैं ना, अमेरिका में यही समस्या है। किसी को कोई काम मिल गया, नौकरी मिल गई, तो वो इतने डरते हैं कि कहीं वो छूट ना जाए, क्योंकि आजकल बहुत मंदी है, इसलिए सबको काम नहीं मिल रहा है। प्रोजेक्ट 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 कहते हैं वो, क्या है बड़ा विचित्र है, वो परमानेंट नहीं है, प्रोजेक्ट ये काम करो करके वो दिया जाता है, वो काम खत्म हो गया फिर बेरोजगारी, फिर दूसरा काम खोजो, ये काम करो करके दिया जाता है, फिर वो काम खत्म हो गया, गया खत्म। अमेरिका का तो बड़ा बेहाल है, फिर भी वहां का मोह ऐसा है कि छोड़ना नहीं चाहते, क्योंकि वहां क्या बढ़िया है, पोल्यूशन नहीं है, साउंड पोल्यूशन नहीं, एयर पोल्यूशन नहीं, वाटर पोल्यूशन नहीं है, वहां के तो आनंद तो यही है, भौतिक आनंद सब कुछ है, लेकिन समस्या है। अब पानी नहीं आएगा, पानी क्या करें, ये चिंता ही नहीं है, वहां सब सिस्टम है, आपने खूब टैक्स दिया है, सरकार के पास बहुत पैसा है, और आपसे जबरदस्ती टैक्स लेता है और आप फैसिलिटी देता है। अब यहां टैक्स के लगा दो तो वो एक अठन्नी टैक्स बढ़ा दिया तो बवाल हो जाता है, तो ये सबसे बड़ी समस्या है। ये अपनी अपनी समस्याएं हैं देश की, वहां कोई बोलता नहीं है, तो वो भी डरने लगा, काम छोड़ू फिर दोबारा आकर ये काम मिले ना मिले, क्या करूं क्या करूं क्या करूं, दुविधा में पड़ गया। अंत में बड़ा हिम्मत करके छोड़ देता हूं, मिले मिले ना मिले ना मिले, पत्नी अंतिम में है, मिलना तो चाहिए पत्नी से। उसने अपने सब धंधा धुंधा समेट लिया और वो वापस चल पड़ा घर की तरफ। इधर पत्नी ने कहा कि तुम्हारा बाप जो है अभी तक नहीं आया है, चिट्ठी लिख रहे नहीं आ रहा है, तुम खुद लेने जाओ, क्योंकि अब तो बड़ा हो गया ना बेटा, 15-16 वर्ष का हो गया वो। कहां जाए तो बोले कलकत्ते में है कि बम्बई में, फलाने एड्रेस में है, सब चिट्ठी आदान प्रदान होती थी, एड्रेस दिया, जाओ बेटा तुम अपने बाप को बुलाकर ले आओ। वो भी घर से आ गया लेने के लिए, बाप घर की तरफ चल पड़ा। अब पहले तो ट्रेन नहीं होगा, घूस नहीं होगा, तो गांव में अलग अलग रात्रि का विश्राम पड़ाव करते करते जाना पड़ता था, है ना? तो संयोग से रात्रि विश्राम के समय में जिस धर्मशाला में वो बाप ठहरा हुआ था, उससे पहले उसी का बेटा गांव से आकर उसी धर्मशाला में ठहरा था। और यात्रियों का चाप इतना था कि कोई अलग कमरे थे नहीं, तो धर्मशाला मालिक ने कहा कि भाई देखो, एक कमरा है वहां केवल एक यात्री है, वहां दूसरा खाट लगा देता हूं, दोनों सो जाओ एक ही कमरे में। अब क्या करे, बाहर सोने की अपेक्षा तो वही ठीक है ना, खुले में सोने की अपेक्षा तो। बोले ठीक है कोई बात नहीं, एक रात निकालना है, लगा दो। धर्मशाला के मालिक ने लगा दिया खाट। अब वो गांव से आया हुआ तो लड़का, उसको कुछ खांसी हुई, जुकाम हुआ। अब उधर शहर से गया हुआ जो बाप, एक दूसरे को नहीं पहचान रहे, नहीं जान रहे। तब वो रात को खांसी करने लगा। वो बाप फिर धंधा समेट कर गया तो कुछ पैसा पैसा उसके पास है। अब वो रात भर डरता रहा कि कहीं ऐसा न हो कि मैं गहरी निद्रा में सो जाऊं और ये सब उसको सब ले ला के लूट लाट के भाग जाए, इसलिए वो सो नहीं पा रहा है और वह खांसी है इसलिए सो नहीं पा रहा है। तो बाप उसको डांट रहा है, कह रहे आपने भी नहीं सोता है, दूसरे को भी सोना नहीं देता। अंत में उसने धर्मशाला के मालिक को कहा, ये तो हमको सोने नहीं दे रहा है। तो वो धर्मशाला के मालिक ने, गांव वाला था वो, और तू बाहर सो जा चल। बेचारा वो डर गया, गांव का अनपढ़ लड़का, वो भी डांट रहा था, मालिक ने भी, धर्मशाला के मालिक ने भी वही कहा, उसका पार्टनर था कमरे का, उसने भी डांटा था, बाहर जा सो जा। बाहर आ गया सो गया। अब वो अंदर से बंद किया, किसने? बाप ने अंदर से दरवाजा बंद किया था, निश्चिंत होकर सो गया ना वो, क्योंकि अब कोई चोर आने वाला नहीं है। सुबह उठा, उठने के बाद बाहर सोया हुआ था वो भी उठने लगा, तो उठते उठते पूछ लेते हैं, भाई तू कहां से आया? तो बाप ने पूछ ले, तू कहां से आया? मैं फलाने गांव से। हैं? फलाने गांव से कहां जा रहा है? मैं फलाने शहर जा रहा हूं। किससे मिलने? बोले मेरा बाप वहां काम करता है, उससे मिलने। क्या नाम है तेरे बाप का? फलाना नाम है। हैं? उस गांव का, उस जगह काम करने वाला फलाना नाम, वो तो मेरा ही है भाई। काम क्या है उसके बाप से मिलने का? बोले मां सख्त बीमार हो गई, मां ने भेजा कि बाप को ले आओ, इसलिए बाप को लेने के लिए जा रहा हूं। तेरा क्या नाम है? मेरा फलाना नाम है। मां का क्या नाम है? मां का फलाना नाम है। ऐ देख लो अब क्या हुआ, अब तो अपना निकला ना वो। नहीं? तो अब उसको पश्चाताप हुआ कि मैंने रात भर उसको बाहर निकाला, मैं एक ऐसा व्यक्ति हूं, न जानने से ऐसा हुआ। बोले बेटा अब शहर में जाने की जरूरत नहीं, तेरा बाप वही मैं हूं, तेरी मां की चिट्ठी से मैं अभी घर के तरफ आ रहा हूं, तो अब चलो घर की तरफ लौटते हैं, तो आगे चले गए। तब रात को फिर विश्राम करना हुआ घर की तरफ, तो एक धर्मशाले में कमरा लिया गया, तो बाप बेटे कमरे में रहने लगे। रात को बेटे को खांसी आई, पिताजी मैं बाहर सोता हूं। है ऐसा? नहीं नहीं बेटा, तुमको ठंडी लगी है, बाहर ठंडी लगेगी मूर्ख। एक रात पहले बाहर भगाया उसको, अब कहता है तुमको बाहर ठंडी लगेगी, तुम यहीं सो जाओ, तुमको ठंडी लगी है, है? अलग भी नहीं सुना, मेरे खाट में आ जाओ, हमारी गर्मी से भी तुमको थोड़ा राहत मिलेगी। अपना रजाई भी उसी के ऊपर डाल रहा है, उसके छाती में तेल लगा रहा है, विक्स लगा रहा है। अब डर होगा? बोलो, अब दुख होगा? ये अपना ही है, ये निश्चय होने पर फिर उसको दुख क्या होगा भाई? दुख तो यह कि ये पराया है। शंकराचार्य जी कहते हैं सर्वम अहम्, जब सब कुछ मैं ही हूं तो मुझे दुख देने वाला और कौन हो सकता है? बोली ज्ञाते तत्ते कुतो दुखम इति वेदांत डिंडिमः। उसी बात को और भी अभ्यास करने का उपाय बता रहे हैं शंकराचार्य। देहादि पंचकोशस्था या सत्ता प्रतिभासते सा सत्तात्मा न संदेह इति वेदांत डिंडिमा। देहादि पंचकोशस्था, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश, पांच कोश में मेरी ही एक ही सत्ता अस्तित्व में है। सभी कोशों में एक ही सत्ता है, मेरी सत्ता है। या सत्ता है कह रहे हो ना, वो जो होनापना सत्ता प्रतिभासते दिख रहा है, वो सत्ता ही आत्मा है। कोश आत्मा नहीं, कोशों का तो पहले निषेध कर रहे हैं। कोश में दिखने वाली सत्ता, यही सत्ता आत्मा है, न संदेह इति वेदांत डिंडिमा। अब देहादि पंचकोशस्था या स्फूर्ति अनुभूयते। सत्ता स्फूर्ति माने चित्त, पहले सत की व्याख्या कर दी, अब चित्त की व्याख्या कर रहे हैं। स्फूर्ति माने चेतना। देह आदि पांच कोश में जो चेतना है, अनुभव में आ रहा है जो चेतना, वही चेतना ब्रह्म चेतना है, वही मैं हूं। सा स्फूर्तिरात्मा नैव अन्यत् इति वेदांत डिंडिमा। देहादि पंचकोशस्था या प्रीतिरनुभूयते। प्रीति माने आनंद, सत चित आनंद, ये अन्वय है, समझे कि नहीं? पंचकोश में पहले सत का अन्वय दिखाया, क्योंकि पंचकोश की जो सत्ता है वो ही आत्मा है। और देहादि में जो चित स्फूर्ति चित वही आत्मा है। अब कहते हैं कि देहादि पंचकोशस्था या प्रीति, तुम्हें अपने अन्नमय कोश में प्रीति है कि नहीं? है अन्नमय कोश में प्रीति प्रेम है कि नहीं? ये प्रीति ब्रह्म का ही अन्वय है, क्योंकि ब्रह्म आनंद रूप है, इसीलिए तुमको अपने देह से आनंद आ रहा है। देह में रहने वाला जो प्रीति है वो ब्रह्म की ही उपस्थिति है, अन्विति है। श्रापेतिरात्मा कूटस्था इति वेदांत डिंडिमः। इस तरह पांचों कोश में सत की अनुवृत्ति, चित की अनुवृत्ति, आनंद की अनुवृत्ति से ये सिद्ध हुआ कि पांचों कोष में मैं ही सत रूप में, चित रूप में, आनंद रूप से एक ही वस्तु का अन्वय है। और आगे क्या कहेंगे कल रहेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम।